پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اما صلی علی محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى على محمد محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر، انتہائی لطف، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت خدا نے متعال نے نصیب فرمائی. خدا نے متعال کی حضور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس نعمت کے صدقے میں مرتے دموں تک ہمیں سید و شہدا کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین کے وفاداروں جانساروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے اپنی خاص رحمت کے سائے میں انسان کو نہ صرف یہ کہ ہدف دیا ہے بلکہ اس کو ہدایت نصیب فرمائی ہے. الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اس نے خلقت بھی دی ہے اور انسان کو ہدایت بھی دی ہے. پھر نہ صرف یہ کہ ہدایت دی ہے بلکہ ہدایت نے کچھ اس طرح کا نظام بنایا ہے کہ کسی انسان کے اندر معمولی سی بھی اگر صلاحیت ہو اور معمولی سی بھی خواہش ہو کہ وہ اپنے کمال کو حاصل کرے، اپنے ہدف کو حاصل کرے، تو اس کے لیے کام آسان ہو جائے. تو ہر پہلو سے ہدایت دی ہے. آپ زندگی کی، انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں پائیں گے جس کے اندر وہ ہدایت نہ جھلکتی ہو. اب چاہے وہ آپ مثال کے طور پر پر آب و ہوا کسی مقام پہ چلے جائیے، سرسبز مقام پہ چلے جائیے، تو وہاں پر آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی جو آپ کو خدا کی یاد دلا سکیں گی. اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی کے حالات پہ غور کریں گے تو آپ کو اس سے بھی ہدایت نصیب ہوگی. اور تعبیر کرنے والے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعا ہدایت چاہے، اور یہ میں خاص کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ इस जैसे या ऐसे किसी और शहर में रहने वाला कोई शख्स अपने आप को मुतमईन करने के लिए ये कहे कि अगर मैं नजफ में होता तो मैं ये होता। जैसा कि मेरे ख्याल में काफ़ी लोग यही सोच रहे होते हैं कि मसलन मेरे जैसे आदमी मसलन सोचेगा अगर मैं पाकिस्तान में नहीं होता ना, मैं वहाँ फना जगह पे होता तो फिर मैं बड़ा परहेजगार होता। तो उन तमाम लोगों की खिदमत में मैं और अपने आप को समझाने के लिए भी अर्ज़ करूँगा कि अगर खुदा हिदायत देना चाहता है और वो उस वक्त हिदायत ज़रूर देता है जब हम हिदायत लेना चाहते हैं। तो अगर हम हिदायत लेना चाहते हों तो खुदा तो दरवाजे और दीवार से भी हिदायत दे देता है, वो मोहताज नहीं होगा। हत्ता हम जैसे बोलने वालों का भी कि कोई बोले तो हिदायत मिलेगी, खुदा तआला हिदायत हर तरह से दे देता है। तो वही बात जो कल या परसों अर्ज़ हुई थी आपकी खिदमत में, वो ये कि पानी पानी चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, प्यास बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप प्यास बढ़ाएं, हिदायत को खुदा तआला से तलब करें अमल के ज़रिए से, अपनी ख्वाहिश के ज़रिए से, तो खुदा तआला हमें और आपको अपनी हिदायत से सरफराज फरमाता है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अब ये जो खुदा तआला की रहमत है कि उसने इंसानी वजूद के अंदर ऐसी चीज़ें रखी हैं कि बहुत सारे काम जो इनिशियली अगर इंसान सोचे बहुत सख्त है, ज़रा सा एक तरकीब को इस्तेमाल कर ले काम आसान है। और ख़ासकर मैं आपकी खिदमत में जो इस वक्त इस पॉइंट को अर्ज़ करूँगा और उसके बाद मौजू को फॉलो करेंगे, वो इंसान के अंदर एक अजीब ताकत है जिसको हम आदत ताबीर करते हैं। इंसान के अंदर आदत का होना ये बहुत अजीब ताकत है, और ये अगर सही इस्तेमाल ना हो इंतहाई मोहलिक है। सही इस्तेमाल हो जाए तो ये इंसान को कमालात तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन रास्ता है। एक दो मिसालें आपकी खिदमत में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद मैं चूंकि गुज़श्ता ज़माने में पढ़ाता रहा हूँ और इस शायद गुमान में रहता हूँ कि अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स आते हैं जो शायद दूसरे लोग यहाँ बैठ के नहीं करेंगे। सर अभी आपने जो दुरूद भेजा उसमें नबी की ज़ात को जहन में सोचा था? ये बुरी आदत है कि आप नहीं सोच रहे, और ये कि आप दुरूद भेज रहे हैं ये अच्छी आदत है। अब आप ये देखिए कि दोनों चीज़ें आदत के तहत हो रही हैं, ये जो आप भेज रहे हैं ये भी आदत है और ये जो आप नहीं सोच रहे ये भी आदत है। अब ये आदत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन खुदा ना करे नाऊज़ु बिल्लाह अगर कोई बुरी आदत पड़ जाए, अल्लाह अकबर, फिर ये समझ लीजिए कुरान भी फ़ायदा नहीं पहुंचाता। कैसे? जैसे अभी आपने तीन दफ़ा फातिहा पढ़ी, बहुत माजरत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस स्पीड के साथ आपने फातिहा और तीन कुल अल्लाह पढ़ी हैं उसके बाद ये तसव्वुर ही नहीं है कि आपने सोचा होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे ये समझ में आता है कि हमारे जहनों में इतनी ताकत नहीं है कि हम 5 मिनट के अंदर 3 फातिहा सोच समझ के पढ़ सकेंगे, हमारे जहनों में ताकत नहीं है। तो ये हम क्या करते हैं कि हम आदत के तहत पढ़ते हैं। ऐज़ान मुहतरम, ये है आदत का मामला। अच्छा, अब आपको और मुझे क्या करना होता है? दुनिया में सख्त तरीन कामों में से एक काम सही आदत बनाना है और उससे भी सख्त काम गलत आदत को सही करना है। अच्छी आदत बना लेना सख्त काम है और बुरी आदत को छोड़ देना बहुत सख्त काम है। अच्छा, अब गलत आदत क्या हो गई यहाँ पे? गलत आदत ये हो गई कि आप सलावत भेज रहे हैं और नबी का नाम ही नहीं सोच रहे। अल्लाहुम्मा सल अला मुहम्मद आले मुहम्मद अज्जल फरज। 3 वजूद यहाँ सोचने, एक अल्लाह का वजूद मुकद्दस, एक नबी और एक उनके औलाद ताहिरा। इन 3 को इतनी ही देर में जितनी देर में आपने दुरूद भेजना है अपने जहन में कम से कम गुजार लेना है। अलबत्ता एक चौथा तसव्वुर था, वो खुद सलात का था। ये जो आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली, इसका मतलब क्या है? ये चौथा कॉन्सेप्ट है जो इस दुरूद के अंदर है। 4 ही तो लफ्ज़ हैं इसमें, अल्लाहुम्मा यानी या अल्लाह, अल्लाहुम्मा का मतलब होता है या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हज्ज बैतिकल हराम, ए खुदाया। सल्ली एक तसव्वुर हो गया, आला नबी का नाम, व औलाद नबी का नाम, यहाँ पे चार तसव्वुर आते हैं। अब आप तसव्वुर फरमाएं कि जब आप दुरूद भेजते हैं तो ये चार तसव्वुर आपके जहन में आते हैं क्या? नहीं आते तो कोई बात नहीं, इसे ले आइए, लाने की कोशिश कीजिए, और इसको देखते रहिएगा कि जब आप कोशिश करेंगे तो एक और पैरामीटर इन्वॉल्व होगा जिसको हम कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल, इंसान के अंदर कंट्रोल की ताकत, वो ताकत है जो उसको कहीं पर भी ले जा सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत फरमाएगा, एक बार फिर दुरूद भेजेगा, मोहम्मद व आदम है, अब आप इस ताकत को पॉजिटिवली कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? इस ताकत को जो आदत की ताकत है, मैंने अर्ज़ किया सही आदत बनाना बहुत मुश्किल काम है, गलत आदत को सही करना बहुत सख्त काम है। पहली बात जो हुई वो ये हुई कि आप दुरूद भेजें, आप फातिहा पढ़ें, कॉन्सेप्ट को सोचें, मफाहिम को सोचें। और मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, अगर वाकयान कोई मफाहिम सोचे, पाँच मिनट में तीन फातिहा नहीं पढ़ पाएगा जो हम कर रहे होते, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? सिर्फ दुरूद में चार कॉन्सेप्ट हैं और पूरी फातिहा में कितने हैं? ये तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर तो इतने दिमाग में ताकत कहाँ है इंसान के? वाकयान नहीं है। अगर इसको सोच समझ के पढ़े तो वो नहीं कर पाएगा। तो क्यों समझ में आता है कि इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी हमें और आपको। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और कल हमने चंद दिनों में जो बातचीत की वो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की रिवायात से हिदायत हासिल करने के ऊपर बात की कि हम इनसे हिदायत कैसे हासिल करते हैं। तो कल एक रिवायत बयान हुई थी, थोड़ा सा उसका खुलासा अर्ज़ करूँगा, और इंशाअल्लाह आज कोशिश करेंगे कि इस मफहूम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। मैं मुकदमे को कम कर रहा हूँ ताकि हम इंशाल्लाह असल के ऊपर पहुंच सकें। एक बार फिर दुरूद भेजेगा, मोहम्मद आले मोहम्मद आले मोहम्मद वाजिल फराजो। दो तीन दिन में जो दो तीन रिवायात हमने पढ़ी आपकी खिदमत में, पहले दिन एक रिवायत थी जिसने बातिन का तसव्वुर पेश किया था, रिवायत के अंदर बातिन का तसव्वुर, और आपके जहन में है कि बड़ा घर, सवारी, अच्छा लिबास, पुरनूर चिराग, और इसका सबका बातिन था। फिर उसके बाद एक रिवायत बयान हुई, और उस रिवायत के अंदर फरमाया इमाम ने कि एक दुनिया है और एक आखरत है, दोनों के बेटे हैं, दोनों के फरजंद हैं, फकूनु अबना अल आखिरा, तुम लोग आखरत के बेटे बनना। आखरत के बेटे कैसे बनते हैं? तीसरी रिवायत बयान हुई, और जो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि से थी, दुरूद भेजेगा, मोहम्मद आले محمد آل محمد وعجل فرجو। उसमें मौला ने फरमाया कि जो दुनिया में काम करने वाले लोग होते हैं, आमिलुन, अमल करने वाले लोग, वो दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो दुनिया में अमल करते हैं, दुनिया के लिए अमल करते हैं। एक वो होते हैं जो दुनिया में अमल करते हैं लेकिन दुनिया के लिए अमल नहीं करते, वो आखरत के लिए अमल करते। जो दुनिया में अमल करते हैं, दुनिया उन्हें धोखा देती है, ये आखरत को भूल जाते हैं, ये खुदा से बहुत दूर रह जाते हैं, और जो दुनिया भी इनको मिलती है वो भी इनको सही फ़ायदा नहीं दे सकती। और उसके बाद फरमाया जो आखरत के लिए अमल करते हैं वो दोनों दुनियाओं से फ़ायदा उठा लेते हैं। अलबत्त ये जो दुनिया के लिए अमल करते हैं, इनको क्या दुनिया बिल्कुल नहीं मिलती? मिलती है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कुरान करीम की आय करीमा से भी शायद, कि खुदा तआला ने निज़ाम बनाया, सूरह अनआम की आखिरी आयात में यहाँ बयान नहीं की थी, लेकिन उसको आप देख सकते हैं, सूरह अनआम की आयात में कानून पूरा बयान किया गया है कि अगर कोई दुनिया तलब करे, दुनिया के अंदर मगन होने की कोशिश करे, तो खुदा उसके ऊपर और दुनिया के दरवाजे खोल देता है, और दुनिया के दरवाजे खोल देता है, यहाँ तक कि जब वो बिल्कुल ही मशगूल हो जाते हैं, अखज़ ना हम बख्तन, तो फिर अचानक उनके ऊपर गिरफ्त करता है, फ़ैज़ा हम मुबलिसून, तो उन्हें धोखा हो जाता है। वो ये समझ रहे होते हैं दुनिया हमेशा के लिए हमारी तरफ आई थी, जबकि दुनिया कहाँ हमेशा किसी की तरफ आती है, नापायदार चीज़ है। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा मफहूम को और आगे बढ़ाने के लिए मैं चंद रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और आज कहीं ऐसी आप यहाँ पर आने से पहले तैयारी करते हुए وہ مشہور معروف ایک روایت نظر میں آئی دوبارہ, اور وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر کو کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں. یہ انتہائی نفیس ایک روایت ہے. اگر میں انتہائی کو کھینچ رہا ہوں تو ظاہر ہے اس وجہ سے کھینچ رہا ہوں کہ اس کی نفاست بہت زیادہ ہے. آپ اس حدیث شریف کے اوپر کئی کتابیں دیکھیں گے, اس حدیث شریف کے اوپر کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی نے اس کے اوپر ایک سلسلے دروس ارشاد فرمایا تھا, کئی دروس اس کے اوپر ارشاد فرمائے تھے, اور وہ کسی نے اس کو ترجمہ بھی کر لیا اردو میں, اور میرے خیال میں انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے. تو ایک حدیث معراج ہے جو بہت مشہور ہے, اس کا بھی ترجمہ ہوا ہوا ہے, اس سلسلے میں بہت زیادہ مددگار ہے تہذیب نفس کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے. اور ایک یہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی کی نصیحتیں ہیں حضرت ابو ذر کے لیے, اور اس کا ابتدا بڑی خوبصورت ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں آیا تو وہاں پہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اور ان کے برابر امین مومنین تشریف فرما تھے اور مسجد خالی تھی. کہا جب مسجد خالی تھی تو میں نے سوچا کہ میں مسجد کے خالی ہونے کا فائدہ اٹھاؤں اور میں اللہ کے نبی سے نصیحت طلب کروں جس سے میں اپنی دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکوں. تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ذر, حضرت ابو ذر کی تعریف میں ایک جملہ کہا جو ابھی میں یہاں پہ بغیر کسی مقدمے میں کہوں گا تو کنٹروورشل ہو جائے گا لہذا میں نہیں کہہ رہا. اور انہوں نے فرمایا ایک جملہ اور اس کے بعد کہا کہ ابو ذر میں تمہیں نصیحت کروں گا جس سے تمہاری سعادتیں پوری ہو جائیں گی اور تم ان کی حفاظت کرنا. پھر حضرت ابو ذر کو نصیحتیں ارشاد فرمائیں, بہت عجیب و غریب. یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی اس روایت کو ایسا رکھ لے کہ اپنی زندگی کے لیے لائن آف ایکشن بنا لے تو یہ آدمی کہاں پہنچ جائے گا, ایک جملے میں جس کی میں ابھی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ ہو جائے گا ولی اللہ. اور ولی اللہ کون ہوتا ہے یہ میں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو تبرکاً چونکہ یہ حدیث یہاں تک میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اس کا تعارف کروا دیا, اس میں سے ایک جملہ صرف عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک جملہ عرض کروں گا, نہیں شاید غلط کر گیا, میں دو جملے سوچے ہوئے, ایک ابھی کہوں گا ایک تھوڑی دیر بعد بات کروں گا. فرمایا کہ یا ابا ذر, اے ابو ذر, ان اول شیء یرفع من هذه الامه الامانه والخشوع. فرمایا بہت لمبی حدیث ہے اور بہت سارے سٹیجز بیان کیے ہیں کہ ابو ذر تمہیں ایسا ہونا چاہیے, تمہیں ایسا ہونا چاہیے, اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, ایسے بن جاؤ تم ویسے بن جاؤ. بہت اچھی حدیث. اس کے بعد یہ حدیث کا بیچ کا حصہ کیوں ہے, جب امت کی خرابیوں کی بات کی تو یہ حصہ آیا ہے. ظاہراً اس کا حضرت ابو ذر علیہ السلام سے کوئی بہت زیادہ براہ راست تعلق نہیں ہے, ظاہر حضرت ابو ذر کا مقام بہت بلند ہے, لیکن امت کی خرابیوں کو جب بیان کیا چند جملات کے اندر تو یہاں پہ یہ جگہ آئی. اور فرمایا کہ اس امت سے جو چیزیں پہلی پہلی اٹھیں گی. اچھا, اب میں اس کو خاص کر کیوں پکڑ کے لایا ہوں, چونکہ جہاں وہ حضرت ابو ذر کو پہنچانا چاہ رہے ہیں ابھی وہاں کہانی دور ہے, لیکن یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اس امت سے جو پہلی پہلی چیز اٹھے گی یہ ہم سے قریب ہے. کیوں؟ چونکہ میں اس اسٹیج کے گمراہی کے بعد میں دیکھ رہا ہوں, ہم اس اسٹیج سے نکل چکے ہیں. میرا اپنے خیال ہے, آپ برا نہیں مانیے گا اس بات کو. ہم سے مراد میں اور آپ, یعنی مطلب یہ معاشرہ شاید گمراہی کے اندر اور ڈسٹریکشن کے اندر اس اسٹیج سے نکل گیا جو اللہ کے نبی نے ابھی کہا ہے. اور فرمایا کہ جب اس امت پہ گمراہی آنے لگے گی, اس میں دوری آنے لگے گی, تو سب سے پہلے یہ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ فرمایا اس امت سے سب سے پہلے جو چیزیں اٹھیں گی وہ نمبر ایک امانت ہے. قوم امانت دار نہیں رہے گی. قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ صحیح بات بھائی, اس میں کوئی تکلف تعارف کی گنجائش ہے کیا؟ امانت داری اٹھ گئی ہے. ہاں بالکل صحیح, اٹھ گئی ہے. اس کا مطلب ہے گمراہی کا پہلا اسٹیج تو کراس ہو ہی گیا. فرمایا, عربی اس کی پڑھنا شاید برکت کا سبب بن جائے, یا ابا ذر ان اول شیء یرفع من هذه الامه الامانه. پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ امانت ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پہلی چیز کہا लेकिन दो चीज़ें बयान की हैं। ये क्यों होता है रिवायत में, एक कहा और दो बयान करते हैं, क्यों? इन दोनों का इत्तेहाद ऐसा है कि दो नहीं बन रही हैं। कहा पहली चीज जो उठेगी अमानत है, वल खुशु, और दिलों से अल्लाह का खौफ उठ जाएगा। बेजाहिर तो दो चीज़ें, खुशु दिल के अंदर होता है, अमानत इंसान की दूसरे इंसानों के मामले में होती है। एक का ताल्लुक हुकूकुन्नास है, एक का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, लेकिन दोनों का कोलैबोरेशन को इतना शदीद है कि अल्लाह के नबी ने इनको एक करके बयान फरमाया। यानी मेरा अपने ख्याल है अल्लाह के नबी हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जब खुशू उठे तो समझ जाना कि क्या हो गया, अमानत जा चुकी है, और जब अमानत उठ जाए तो समझ जाना कि अब खुशू बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, सोसाइटी में दोनों की हालत क्या है? दोनों ही गायब है। अच्छा, ये खुशू क्या होना चाहिए? इसी रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने एक जगह पे इरशाद फरमाया, एक बार फिर उनकी जात पे दुरूद भेजेगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमाया कि अगर किसी को देखो कि वो इल्म हासिल कर रहा है और ये देखो कि उसके खुशू में इजाफा नहीं हो रहा, तो समझ जाना ये वो इल्म है जिसको कोई फायदा नहीं दे रहा। इल्म और खुशू का बराह रास्त ताल्लुक बयान फरमाया इसी रिवायत के अगले मराइल के अंदर। अगले मराइल से मेरा मतलब यानी मानवी तौर पर अगले मराइल, वरना जुमले में शायद पहले था या बाद में था, मुझे याद नहीं है। तो फरमाया कि जब भी किसी को इल्म नसीब होगा, खुशू नसीब होगा, और अगर खुशू नसीब नहीं हो रहा है, इसका मतलब है जो इल्म इसको मिल रहा है, इस इल्म का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मैं चूंकि सख्त बातें करने का आदी हूँ, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। और इसको हम लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं, कहते हैं मैं दस बस्ता कह रहा हूँ और हाथ नहीं जोड़ते। दस बस्ता का मतलब होता है हाथ बंद, यानी यूं करके। लेकिन हम लोग बाज़ औक़ात कहते हैं दस बस्ता बगैर हाथ जोड़े, तो मैं भी ये कह रहा हूँ दस बस्ता बगैर हाथ जोड़े। वो क्या, 60 दिन में जो आपको इल्म मिला, इससे आपके खुशू में इजाफा हुआ है क्या? अगर खुशू में इजाफा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इल्म नहीं है। इल्म अपनी माहियत के अंदर अल्लाह का खुशू लेकर आता है। अच्छा, इस खुशू की अलामत क्या होनी चाहिए? हर इंसानी नफसानी कैफियत की कोई अलामत होती है। एक इंसान खौफजदा होता है तो चेहरे पे आता है, नहीं आता? आता है। खुश होता है तो चेहरे पे आता है, बिल्कुल आता है। वो आपने स्टडी शायद सुनी होगी या कहीं देखी होगी, अगर आपकी फील्ड है, कि मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने जो इंसानों के इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे होते हैं, या मसलन जैसे हम इस बात कर रहे हैं, हमारी कोई तस्वीर बन रही है, वीडियोज़ बन रही हैं, तो उसने 1 सेकंड में मसलन कितने फ्रेम्स चलते हैं तो आपको सही चलता हुआ नज़र आता है, तो उसने ब्रेक कर दिया और मसलन 1 सेकंड के कई फ्रेम्स निकाल लिए उसने। तो मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 सेकंड के उसने 25 फ्रेम निकाल लिए, तो उसने देखा कि इंसान के चेहरे पर तेज़ी में जो असरात नज़र नहीं आते, तब्दीलियाँ नज़र नहीं आती मसल्स की, वो छोटे होने पर, फ्रेम ज़्यादा करने पर नज़र आ जाती हैं, वो नज़र आ जाती। तो उसने ये अंदाज़ा किया कि इंसान के चेहरे पर मसल्स कितने हैं, क्योंकि ये सारे मसल्स का कॉम्बिनेशन है जो उसके अंदर की हालत को ज़ाहिर कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद उसने सबका अंदाज़ा लगाकर बताया कि भाई इंसान के चेहरे में जो मसल्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ इतनी बन रही हैं। उसके बाद उसने उन तमाम को नफ्सियाती हालतों से कनेक्ट किया, सही है। तो उसने बताया कि भाई अब मिसाल के तौर पर एक आदमी के ऊपर एक हालत है जिसमें खौफजदा तो है लेकिन अभी उम्मीद बाकी है, सही है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे जिसमें वो खौफजदा है और अभी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अच्छा, एक दफा खौफजदा है, उम्मीद बाकी है और खौफ भी कोई ज्यादा नहीं है, खौफ ज्यादा नहीं, कोई बड़ी चीज खतरे में नहीं है, लेकिन एक दफा चीज बहुत बड़ी खतरे में है, खौफ भी है और उम्मीद कम है, तो फेशियल एक्सप्रेशन सबके बिल्कुल डिफरेंट है, सही है। जो कुछ इंसान के अंदर होता है बाहर आता है, और ये आपकी और हमारी महारत होती है। तो उसने ये भी कहा कि इंसान फेशियल एक्सप्रेशंस को स्टडी करने में इतने माहिर हैं कि कोई आदमी एक्सपर्ट हो और ना हो, इनका जो एक्यूरेसी का डिफरेंस है वो 30% से ज़्यादा नहीं है। कोई आदमी एक्सपर्ट हो और एक्सपर्ट ना हो, दोनों फेशियल एक्सप्रेशन को स्टडी करें तो इनकी एक्यूरेसी का रेट 30% से ज़्यादा डिफर नहीं करता है। एक्सपर्ट 30% ज़्यादा एक्यूरेटली बता देता है। तो इंसान को खुदा ने यह महारत दी है। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो ये कि अगर हमें वाकई इल्म मिल रहा है और इल्म के साथ खुशू मिलना ज़रूरी है, इस खुशू की हालत की कोई अलामत है क्या? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये तो चेहरे पे आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अमल में आएगी या नहीं आएगी? खुशू की हालत आएगी, कम से कम क्या आएगी? इंसान के दिल में खुदा का खुशू हो, कम से कम क्या होगा? कम से कम ये होगा, एक बार फिर दुरूद भेजेगा, मुहम्मद आल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल अला मुहम्मद आल मोहम्मद वाजिल फरज। इंशाअल्लाह परवरदिगार आपके हमारी इस मजलिस को और ज़्यादा बाबरकत फरमाए, नूरानियत में इजाफा फरमाए। एक बार फिर दुरूद भेजें, मुहम्मद आल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल अला मोहम्मद वाजिल फरज। तो ऐसा मोहतरम, खुशू की क्या अलामत होनी चाहिए? अगर एक इंसान की ज़िंदगी में खुदा का खौफ है, खुशू है, तो क्या होना चाहिए? कम से कम क्या होना चाहिए? तो मतलब मैं अपने तौर पे सोचता हूँ कि अगर मेरे दिल में किसी की मोहब्बत है, अच्छा खुशू सिर्फ जहन्नम का खौफ नहीं है, खुशू एक हालत जो होनी चाहिए वो सिर्फ जहन्नम का खौफ नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में शायद खुशू ज़्यादातर एहतराम और मोहब्बत के नतीजे में आनी चाहिए। सही है? एक दफ़ा मसला ये होता है ना कि हम किसी से डर रहे होते हैं कि अगर हमने उसके सामने कोई गलत हरकत की तो बहुत मारेगा। सही, इसको खौफ तो कह सकते हैं लेकिन खुशू कहना मुश्किल है। लेकिन मसलन पुराने ज़माने में, नए ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने ज़माने में जैसे वालदैन के सामने एहतराम से लोग बैठते थे तो शायद मारेगा भी नहीं, क्योंकि अब बेचारा इतना बूढ़ा हो चुका है कि मारने की ताकत भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी खुशू था। सही, पुराने ज़माने की बातें हैं, ऐसे नए ज़माने की बातें हरगिज़ नहीं हैं, ये पहले ज़माने में होता था ऐसा। तो ये जो खुशू है, अगर किसी के अंदर खुदा के लिए हो तो उसके उसके साथ क्या होना चाहिए? कभी ना कभी तन्हाई में रोएगा, कभी ना कभी तन्हाई में रोएगा। अच्छा, अगर कोई शख्स तन्हाई में खुदा के लिए नहीं रो रहा, इसका मतलब क्या? मैं तालिबे इल्म होने के नाते अर्ज कर रहा हूँ, खुशू नहीं है। और अगर रिवायत भी है, मैं तो खुद ऐसी अपने उसमें डाल दिया मैंने कि तालिबे इल्म रिवायत है मेरे पास, फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गोया ख़िताब किया अल्लाह ताला ने, फरमाया कि ऐ मूसा, छूटा है वो आदमी जो कहता है कि मुझे चाहता है और जब सब सो जाते हैं तो मेरी याद में नहीं उठता, ये मुझसे तन्हाई में गुफ्तगू क्यों नहीं करता अगर ये मुझे चाहता? अच्छा, ये आदत कि इंसान तन्हाई में खुदा को याद करे, ये कौम से उड़ गई है या अभी कौम में बाकी है? तो ऐसा मौसम, अब इसको वापस कैसे लाएं? मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, अगर किसी इंसान को अच्छी आदत मिल जाए ना, क्या काम हो गया। और खुदा ना करे अगर कोई बुरी आदत में फंस जाए तो किस बदबख्ती में फंस गया। तो अब क्या हो गया, एक खुदा ना करे नाऊज़ु बिल्लाह, एक बुरी आदत माशरे के ऊपर हाकिम हो गई। वो क्या है? खुदा के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया, खुदा के सामने राज़ो नियाज़ करना बंद कर दिया। तो इसे कहां से सही करें, किस तरीके से इसको बेहतर करें? तो जो नबी की रिवायत थी उसमें अमानत के साथ आया हुआ है, इसका मतलब है कोई ना कोई ताल्लुक अमानतदारी से है। और हमारे पास एक और रिवायत है, उस रिवायत को मैं तशय्यो के मनाबे में नहीं देख सका, कम से कम हमारे भाइयों की सहीहैन के अंदर तो है। उस सहीहैन के अंदर एक रिवायत है, मफहूमन सही लग रही है लेकिन हमारे पास, मैं कम से कम अपनी सोर्स में नहीं देख पाया अभी तक। उसमें भी अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू ज़र को वसीयत की थी, नसीहत की थी, اور فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، حضرت ابو ذر نے گویا اس طرح پوچھا کہ میں کچھ اچھے کام انجام دینا چاہتا ہوں، نہیں کر پاتا، تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں کچھ اچھے کام انجام دینا چاہتا ہوں، نہیں کر پاتا، اب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس روایت میں کہا، صحیحین میں ہے، کہا کہ لوگوں سے اپنے شر کو کم کر لو، یہ خود ایک صدقہ ہے. مفہوم صحیح، ایگزیکٹ ورڈز کے اوپر مجھے اپنے منابع میں نہیں ملی، لیکن مفہوم بالکل صحیح، مفہوم موجود ہے ہمارے پاس. صحیح، لوگوں کے ساتھ تمہارا شر بڑھے گا تو ایک اثر کیا نکلے گا؟ جو تم اچھا کام کرنا چاہتے ہو نہیں کر پاؤ گے. صحیح، تو اب ہمارے پاس پوری ایک سیکوینس بن رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ ہمارے منابع کے اندر موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، کہ فرمایا اے ابو ذر، میری امت سے جو پہلی چیز اٹھے گی وہ امانت ہے اور خشوع ہے. یہ دو چیزیں میں نے کہا کہ دو کو اول کیوں کہا تھا، یہ اسٹیج کی وجہ سے کہا تھا، کہ یہ دو چیزیں سب سے پہلے اٹھ جائیں گی. کیا چیز ہوئی؟ امانت اٹھے گی، امانت داری اٹھ جائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں خشوع نہیں رہے گا. تو میں نے کہا ان کا کوئی رابطہ ہے. رابطہ کہاں نکل رہا ہے؟ اس دوسری روایت سے نکل رہا ہے کہ جب ہم امانت داری میں خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے ہمارا وجود شر بن جاتا ہے، تو پھر خشوع بھی ہمارے دل سے نکل جاتا ہے. تو اب میں اس پورے کو جمع کر کے کنکلوژن کیا نکالوں؟ کنکلوژن یہ نکالوں کہ اگر مجھے خشوع چاہیے تو کم سے کم، یہ بھی روایت میں موجود ہے، یہ بھی روایت موجود، تم اگر خدا کے لیے رو نہیں سکتے نا، تو کم سے کم حزن تو اپنے دل میں لاؤ، غم تو لے کر آؤ خدا کے لیے. تو میں کیا کروں؟ میں اس طرح سے کروں کہ میں اپنے اوپر اس بات کو پریکٹس کے طور پر لے کر آؤں کہ میں خدا کے لیے تنہائی میں کوئی کیفیت بنا سکتا ہوں اپنے اندر، اکیلے میں خدا کے لیے کوئی کیفیت بناؤں اپنے لیے. جب میں دیکھوں اس کیفیت کو بنانے میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کامیابی نہیں ہو رہی، تو پھر میں کیا سوچوں؟ میں سوچوں لوگوں کا کون سا حق ہے جو میں نے ادا نہیں کیا ہے. کیونکہ اگر لوگوں کا کوئی حق میرے ہاتھ پہ رہ گیا ہے، اس کا مطلب یہ کیفیت مجھے نہیں ملنے والی. تو میں اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کے اندر غور کروں کہ امانت داری میں کوئی چیز رہ گئی ہے. اچھا، یہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی ہمارے منابع کے اندر موجود ہے، بس وہ ایک روایت تھی جو مجھے نہیں ملی تھی، باقی ہماری والی ہیں. اس میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولے تو جو چیز اس کے ہاتھ سے نکلتی وہ نماز شب ہے، یہ نکل جاتی ہے. صحیح، تو پھر ہمیں ایک اور رابطہ ملتا ہے، وہ یہ کہ انسان کے اعمال جو دوسرے انسانوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ اس میں کہیں حقوق کی عدم ادائیگی میں عبادتیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور ان عبادتوں میں جو چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، وہ خاص کر نماز شب کیوں ارشاد فرمایا؟ وہی تنہائی اور خشوع کا معاملہ ہے. لب لباب کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ناکام ہوگا، خدا اس کو اپنی تنہائی سے باہر نکال دے گا، خدا اس کو تنہائی نصیب نہیں کرے گا. صحیح، یہ وہ خطرناک ایکویشن ہے جو ہمارے سامنے. اب اس کو میں اور آپ دونوں طرف سے توڑنے کی کوشش کریں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ جو معاشرے کے اوپر یہ حالت ہے، اور اس طریقے سے کہ ایک طرف سے ہم خدا کے لیے وقت نکالیں اپنی زندگی میں کہ بھائی مجھے خدا کی خدمت میں حاضر ہونا ہے تنہائی میں. تنہائی میں اصرار کیوں ہے؟ کیونکہ ویسے تو سوشل پریشر میں انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، اس میں خدا کم ہو جاتا ہے، بعض اوقات سوشل پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. تو تھوڑا تنہائی میں جائیں، اور اس تنہائی کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ دیکھے اس میں کامیابی زیادہ نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسی وقت اور یا اس سے پہلے جج کرے کہ میں لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے میں خدا نہ کرے کہیں ناکام تو نہیں ہو رہا ہوں، وہ ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا. تو یہ ایک مرحلہ بن جائے گا، اور اس میں پھر آہستہ آہستہ ترقی ہونا نصیب ہو جائے گی. اچھا، اس میں ایک اور مرحلہ بھی آئے گا، وہ کیا؟ 5-10 دن کرے گا پھر بھول جائے گا. اجے 5-10 دن کرنے کے بعد کیوں بھولا تھا؟ کیونکہ اس 5-10 دن میں اس نے کوئی اور نیا حق ہے جو ادا نہیں کیا، ایک نئی کہانی شروع کی اس نے، پھر ہاتھ سے جائے گا. سر، اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ وہ کسی نے لکھا نا کہ بھائی آپ جو اخلاق بولنے والے ہو، وہ ڈاکٹروں کی طرح نسخے لکھ لکھ کے مت آیا کرو، بلکہ دوائی کھلا کے آیا کرو. اس کا ڈاکٹر لکھتا ہے چونکہ اس کو اپنا کلینک چلانا ہوتا ہے، اور دوائی وہ کھلاتا ہوتا ہے جس کو شفا دینی ہوتی ہے. تو نسخے مت لکھو، दवाई खिला के। सब दवाई खिलाने के लिए क्या करें, क्योंकि इसके साथ एक और चैप्टर भी है, वो क्या है, ये कभी ना कभी हुकूक में कोताही करेगा, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए अपनी ज़िंदगी में एक चैप्टर बना ले इस्तिग़फ़ार। रोज़ाना की बेस पे तन्हाई में अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करें। उम्मीद कवी ये है कि अगर खुदा ना करे दिन में कोई गड़बड़ करेगा भी, तो उस इस्तिग़फ़ार के सदक़े में वो गड़बड़ थोड़ी सी जमा हो जाएगी, वो बरतरफ हो जाएगी, और ये खुदा की तरफ अपने खुशू के रास्ते में चलने में कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हज़रत अबू ज़र के मामले में दो जुमलात आपकी खिदमत में अर्ज हो गए। अब एक रिवायत है जिसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, इसमें औलिया अल्लाह को बयान फरमाया। अब बज़ाहिर तो ऐसी बात है, मैं ऐसी कहूँगा कि भाई इसका हमसे क्या लेना देना, क्यों हम कहाँ, अभी कहानी शुरू की नहीं है, औलिया इलाही का कहाँ तस्करा। लेकिन शायद इस खातिर देखना अच्छा है कि इंसान ये देखे खुदा हमें कहाँ पहुँचाना चाहता है। बाज़ औक़ात इंसान की हिम्मत बनती है ना इसको देख कर के, भाई पहुंचाना कहाँ चाहता है। अच्छा, हम लोगों के साथ एक मुश्किल चली हुई है, उसको आप ड्रामा कह सकते हैं, सही लाइफ का ड्रामा। वो क्या है, छोटे छोटे अहदाफ पूरे करके समझते हैं यही ज़िंदगी है, छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। मैंने एक मस्जिद बना ली, मैंने एक काम कर लिया, बस समझा बड़ा तीर मार लिया। एक दफ़ा हमने एक स्कूल बनाया, उसमें 250 बच्चे हो गए 2 साल में। अब बड़े खुश के हमने 250 बच्चों का स्कूल खोल लिया। अच्छा, पाकिस्तान में तो 250 बच्चे आपको पता ही, कनाडा में तो शायद कोई मामला हो, पाकिस्तान में क्या। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट और बच्चे उबल रहे हैं। तो भाई वो तो वाकई मसला, तो वहाँ 250 बच्चे क्या बेचते। मेरे दिमाग में है कि मैं क्या बेवकूफाना बात सोची, इतनी आबादी में 250 बच्चे आगे कौन सा कारनामा किया। शायद खुदा हमसे 25,000 बच्चों की यूनिवर्सिटी खुलवाना चाहता था, हम 250 बच्चों का स्कूल खोल के समझने को बड़ा तीर मार लिया। खुदा छोटे अहदाफ नहीं देना चाहता, खुदा बड़े अहदाफ देना चाहता। हाँ, ये बात है कि बड़े अहदाफ हासिल छोटे अहदाफ से ही होते हैं, लेकिन बहरहाल खुदा छोटे काम नहीं देना चाहता, खुदा बड़े काम देना चाहता। तो वलीउल्लाह के बारे में ये रिवायत फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलिए, इससे पहले एक और जुमला भी अर्ज करता चलूँ। बाज़ औक़ात जब ये बातें हम लोग कहें, कोई सुने, तो वो ये कहता है मौलाना ये बातें कहीं और की हैं, हम लोग दुनियादार लोग हैं, हमें इन बातों में कहाँ, इस तरफ क्या है, कहाँ आप लेके आए, अगर दुनियादार ना होते तो कनाडा आते ही क्यों मसला। बाज़ लोग ऐसे कहने लगते हैं, मैं नहीं कह रहा आपके लिए, तो बाद लोग ये समझ रहे हैं कि दुनियादारी और आखरत पसंदी ऑप्शनल है, और कुछ लोगों ने ऑप्शन में ये लेना है, सिलेक्शन करना है कि वो आखरत पसंद हो जाएंगे, और कुछ लोगों ने ये लेना है कि वो दुनियादार हो जाएंगे। इसमें क्या बुराई है। तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि हमारा जो दीन है वो हमसे ये कह रहा है कि देखो, अगर तुमने आखरत को चूज नहीं किया तो इसके सिवा जो कुछ है वो सिवाय घाटे के कुछ नहीं है, वो घाटा ही घाटा है। यहां दो ऑप्शन नहीं है, असल में दो ऑप्शन नहीं है कि मसलन कुछ लोग ये ले लेंगे, कुछ लोग वो ले लेंगे। कुछ लोग कहेंगे भाई ठीक है, कुछ लोगों को मिलाकर मसलन मानवियात की तरफ जाना है, वलीउल्लाह बनना है, हर एक ने थोड़ी बनना है। तो मुझे बहुत पहले की बात है, 1984-85 की एक मदरसे में पढ़ता था, वहाँ एक उस्ताद आए तकरीर करने के लिए, तो उन्होंने कुछ बातें की, नसीहत करते हुए उन्होंने एक जुमला कहा बड़ा खूबसूरत। उन्होंने कहा देखो भाई, जहन्नम जाना वाजिब किफाई है, वाजिब ऐनी नहीं है। खुदा ने कहा है कि मैं कुछ लोगों को जहन्नम में लेके जाऊँगा, लेकिन उसने वाजिब किफाई के हद में रखा है, वाजिब ऐनी नहीं रखा। तो आप बिला वजह में वाजिब ऐनी समझ के जहन्नम ना जाएं, तो दूसरा ऑप्शन भी है, वहाँ पर भी जाए। तो ऐसा नहीं है कि मसलन दो ऑप्शन है, आप अहले दुनिया बनेंगे, अहले आखरत बनेंगे। क्यों, अहले दुनिया खसारा है सिर्फ, घाटा है सिर्फ, اس کی خاطر میں آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین کا جملہ عرض کر رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فات. اور کل اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ بھائی جو دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اہداف دنیا پہ ہوتے ہیں. امام کیا فرما، امام نے فرمایا یہ کلمات قصار کے اندر ہے، بظاہر ترتیب میں 106 نمبر بنے گا، لیکن مختلف ترتیبیں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. فرمایا لا یترک الناس شیئا من امر دینہم لاستصلاح دنیاہم الا فتح اللہ علیہم ما ہوا اضر من. لوگ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے سوائے یہ کہ خدا اس سے بدتر کوئی چیز ان کے اوپر ڈال دے گا. دوبارہ عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ لوگ ترک نہیں کریں گے اپنے دین کے کاموں میں سے دنیا کو بنانے کے لیے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی دنیا کو بنانے کے لیے دین کا کوئی کام ترک کرے گا تو کیا ہوگا، خدا اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ نقصان دہ کوئی چیز کھول دے گا. مثال، ایک آدمی کہتا ہے مولانا مجھے صبح کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، اگر میں صحیح نہیں سوؤں گا تو جاب پہ کیسے جاؤں گا، اور صحیح نہیں سونے کے لیے مجھے رات کو تھوڑا دیر تک جاگنا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے فجر کی نماز قضا کرنی ہوتی ہے، اور یہ میرے لیے تقریباً واجب عینی ہو گیا. صحیح ہے؟ اچھا، اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ دنیا کے ایک کام کو حل کرنے کے لیے آخرت کا ایک کام چھوڑ رہا ہے. صحیح ہے؟ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں اس کے بعد خدا اس کے لیے اس سے بڑا کوئی نقصان لے کر آئے گا جس سے بچنے کے لیے یہ آخرت کا کام چھوڑ رہا تھا. صحیح؟ اچھا، یہ کس کام کے لیے کر رہا تھا، یہ اپنی روزی کے لیے اپنی دانش میں. میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روزی کا لفظ کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے، مس یوز کتنا ہے اس کا. تو یہ اپنے دانست میں اپنی روزی کے لیے خدا کے ایک کام کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا، اگر یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اگر میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے جسم کو نقصان پہنچے گا، پراپر ریسٹ نہیں ملے گا، تو میں اس کو بالکل اس کی لاجک پہ لا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا میں خدا کی نافرمانی کروں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جسم کو پراپر ریسٹ دینے کے لیے فجر کی نماز چھوڑ رہا ہوں. تو میں اس سے پوچھوں گا، دیکھو بتاؤں گا اس قول کی روشنی میں کہ دیکھو اب دو کام ہونے والے ہیں. نمبر ایک، تمہیں پراپر ریسٹ کبھی نہیں ملے گا، کیوں، تم نے اس کی خاطر آخرت کا کام چھوڑا تھا نا. نمبر ایک، تمہیں پراپر ریسٹ کبھی نہیں ملے گا. نمبر ٹو، انریسٹ سے بڑھ کر کوئی اور نقصان بھی آئے گا. ایک تو ریسٹ گیا، یہ تو تمہیں کبھی نہیں ملے گا اب، چونکہ تم نے اس کی خاطر خدا کا حکم پامال کیا، نمبر ایک. نمبر دو، کوئی اور لاس اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اب. امام نے فرمایا کہ خدا اس کے لیے نقصان کا کوئی اور دروازہ کھولے گا. کیوں، آپ خود دیکھیں نا، اگر میں نعوذ باللہ تعالی اپنے کسی محسن کے سامنے اس محسن کی کسی دی ہوئی ذمہ داری کو ترک کروں کسی اور چیز کی خاطر، تو اس کا حق کیا ہے؟ کچھ تو مجھے ہلائے. اچھا، یہ بھی خدا میرے لیے بہتری کرے گا، میں بتا رہا ہوں. مثلا کوئی ممکن ہے مجھ سے کوئی بندہ کہ مولانا ہم نے بڑے دیکھے ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، ریسٹ بھی لیتے ہیں، دنیا بھی بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. خدا نے فرائین کے لیے ایسے ہی رکھا ہے، فرعونوں کے لیے ایسے ہی رکھا ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ انعام کے اندر آیا ہوا ہے کہ ہم پھر اس کے اوپر سارے دروازے کھول دیتے ہیں، البتہ پھر اچانک پکڑتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے 15-20 سال 10-12 سال خوب مزے میں گزارے اپنی دنیا حاصل کر کر کے، اور اس کے بعد خوب روئے اس بات کو یاد کر کر کے کہ ہم نے کیا غلط کام کر دیا. صحیح ہے؟ یہ دنیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آخرت کو تو چھوڑ ہی دو، دنیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کبھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، جل رہے ہوتے ہیں، اینڈ میں جا کے پتہ چلتا ہے یہ اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. پھر کسی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہمارے اوپر، خدا سے گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، یہ تو نے کیوں کر دیا، بعد میں پتہ چلتا ہے سب سے بڑی نعمت یہی تھی. ابھی پچھلے سفر میں یہیں پہ جب میں آ رہا تھا تو ایک صاحب میرے ساتھ واپس میرے ساتھ کہیں پہ جا رہے تھے، لٹرلی जिसको आप लोग कहते हैं लिटरली, तो वो अपने आंसुओं से रो रहा था कि मौलाना मुझे अब समझ में आ गया है कि मैंने गलती कर ली है और अब मैं एक ऐसी जगह पे फंस गया हूं कि न जाए रफ्तन न पाए मौनदन, फंस गया हूं। और मैं तकल्लुफ में नहीं कह रहा, वाकई रो रहा था और इतना रो रहा था कि मैं उससे कहने वाला था कि भाई ये मेरा सफर है आखिर नहीं है, रोना ही है तो घर जाके रो लेना, अभी तो कम से कम ड्राइविंग ढंग से कर लो। अच्छा ये जो हालत हुई, हाँ मुमकिन है ये चांस है, आंखें तो मेरी थोड़ी खराब हुई हैं लेकिन कान खूब चलते हैं अभी भी। तो ये हालत क्यों होती है, ये हालत उस वक्त जब ये हालत आ रही थी तो क्या कर रहा था उस वक्त, ये हर हर हफ्ते नियाजें मान रहा होगा कि काश ये हो जाए, पता नहीं कौन कौन सी नमाजें पढ़ रहा होगा कि काश ये हो जाए। कुछ साल लगे हैं जिसके बाद अब ये रो रहा है कि ये हुआ क्या। सही, ये दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है और खुदा ना करे नाउज़ु बिल्ला अगर हम हर रोज ऐसी पांच चीजें ट्रिगर कर रहे हैं जिसमें खुदा का कोई काम छोड़ रहे हैं दुनिया के लिए, तो हम बुरी चीजें ट्रिगर कर रहे हैं। अच्छा अब रिव्यू करें और ये सोचें कि हम रोजाना की बेस पर किसी खुदा के हुक्म से ना लड़ रहे हों बस। और मैं कहीं और भी कल भी कर्ज किया था, भाई आप दुनिया में कहीं भी रहें मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा, या मसलन मौलवियों को क्या फर्क पड़ेगा आप कहां पे भी रह रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका दिन हर जगह सही रह सकता है, मैं भी थोड़ी देर पहले आपकी खिदमत में क्या अर्ज किया था, लेकिन मसला क्या है, आप खुदा के अहकाम को दुनिया की खातिर कुर्बान ना करें। बस पॉइंट यहां पर, खुदा का कोई हुक्म कुर्बान ना करें, बाकी सब सही। बाकी आप चलें दुनिया में जहां कहीं भी रहना रहें, आप अपनी हिदायत के ऊपर मेहनत करें, अल्लाह के अहकाम को पामाल ना करें। तो इमाम का एक कौल कलिमात कसार के अंदर मौजूद है कि फरमाया कि अगर कोई शख्स आखरत के किसी काम को अपने दुनिया की किसी काम के लिए जाया करेगा तो खुदा उससे बढ़कर नुकसान इसके सामने खोल के रख देगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कलिमात कसार में से एक और है जिसमें इमाम ने औलिया इलाही को बयान फरमाया, ये बहुत पुरानी हदीस है, हम जितना भी इसके ऊपर आज के दिन के लिए पहुंच सके आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हाँ वक्त तो हमारा तकरीबन ख़त्म हो ही चुका है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वक्त तो इख्तिताम पज़ीर है लेकिन थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं फिर इंशाअल्लाह देखते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना फरमाए इन्ना औलिया अल्लाह हुम अल्लज़ीना नज़रू इला बातिनि दुनिया इज़ा नज़र अन्नास इला ज़ाहिरिहा। ये जो औलिया इलाही हैं ये खुद क्या होते हैं, इसी रिवायत में थोड़ा सा आएगा, इनके नतीजे में क्या होता है ये भी इस रिवायत में आएगा। एक पहलू इस पहले जुमले में आया है, इनकी ज़ात का नतीजा क्या निकलता है ये आएगा, ये खुद कैसे होते हैं ये भी आएगा। सिर्फ एक क्वालिटी यहाँ पे आई है, ये जो औलिया इलाही हैं हुम अल्लज़ीना नज़रू इला बातिनि दुनिया, ये लोग दुनिया के बातिन को देखते हैं जबकि लोग दुनिया के जाहिर को देखने में मशगूल होते हैं। ये दुनिया के जाहिर नहीं देखते, ये दुनिया का बातिन देखते हैं। एक बात समझ में आ गई, औलिया इलाही साहिबान बसीरत होते हैं, एक बसारत होती है एक बसीरत होती है। लोग बसारत से जाहिर देखते हैं, ये बसीरत से बातिन देखते हैं। सही, अच्छा ये दुनिया का बातें देखते हैं क्या मतलब, इनको इलेक्ट्रॉन मूव करते नजर आते हैं इसके पीछे? नहीं, इनको दुनिया की हकीकत नजर आती है, इनको दुनिया की हकीकत नजर आती है। वो क्या हकीकत है, इमाम बयान फरमा रहे जबकि लोग जाहिर को देखते हैं ये दुनिया के बातें को देखते हैं, और जबकि लोग इश्तगलू बिआजलिहा इज़्ज़तअलन्नास बिआजलिहा, ये अपने आप को मशगूल करते हैं दुनिया के लंबी मुद्दत के कामों में, जबकि लोग अपने आप को मशगूल करते रहते हैं दुनिया के छोटी मुद्दत के कामों में। क्या मतलब, इनका प्लान बहुत लंबा होता है, दुनिया वालों का प्लान बहुत छोटा सा होता है। दुनिया वालों का प्लान कितना बड़ा होता है? जितना घर का मॉर्गेज, 25 साल, 30 साल, 40 साल। इनका प्लान कितना बड़ा होता है? इनका प्लान होता है खालिदीना फिहा। ये सिर्फ एक घर नहीं बनाते जिसका मॉर्गेज 25 साल में होगा तो 5 साल बाद तो खुद ही फारिग हो जाएगा बंदा, नहीं, ये वहां घर बनाते हैं जहां हमेशा रहना होता है। तो जब दुनिया के लोग छोटी मुद्दत के प्लान पे काम कर रहे होते हैं, ये जिंदगी के लंबी मुद्दत के प्लान के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लंबी लंबी चीजों को देखते हैं कि बाद में क्या होने वाला, उसको देखकर काम कर रहे होते हैं। लोग छोटी छोटी चीजों में लगे रहते हैं। तो इनके अंदर दो क्वालिटीज समझ में आ गई, एक तो है कि साहिबान बसीरत हैं, ये दुनिया का बातें देखते हैं, ये जाहिर नहीं देखते। दूसरी बात है कि ये दुनिया के जरिए से अपने प्लान को लंबी मुद्दत का बनाते हैं। और जबकि लोग दुनिया के अंदर रहते हुए प्लान छोटी मुद्दत का बनाते हैं, 30-40 साल सोचते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते। वो जुमला मैंने अभी खिदमत में शायद अर्ज़ किया था अल्लामा तबतबाई का, कि हम लोग फना के लिए नहीं बने, हम लोग बका के लिए बने। तो इनका प्लान बका के लिए होता है कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ी रहना है हमेशा, 40 साल यहाँ पे रहूँगा, उसके बाद कहीं और जाऊँगा, वहाँ मुझे लंबी मुद्दत रहना है। तो घर वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ ये तो सोचो। तो जब लोग ये कर रहे होते हैं, वो लोग वो कर रहे होते हैं, उसके बाद फरमाया फअमातु मिन्हा मा खशु अन युमीतहुम व तरकु मिन्हा मा अलिमु अन्नहु सयतरकुहुम। इन्होंने देखा है कि दुनिया में दो क्वालिटीज हैं। दुनिया इनके अंदर से कुछ चीजों को मार देती है और दुनिया इनको किसी मौके पे लाके तर्क कर देती है। इन्होंने दुनिया की दो क्वालिटीज को बातिन पे देखते हैं ना ये लोग, तो बातिन को देखने की वजह से इन्होंने दो चीजें देखी। वो क्या है? वो कि जब दुनिया आती है तो ये अंदर से कुछ चीजों को मार देती है। और दुनिया की दूसरी बुराई इन्होंने ये देखी कि दुनिया खास मौके पे इन्हें तर्क करके चली जाती है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा दुनिया आती है तो कुछ चीजों को मारती है, तो जो दुनिया इनके अंदर से मारती उससे पहले इन्होंने दुनिया को मार दिया, ताकि दुनिया इनके अंदर से कुछ चीजों को मार ना सके, खत्म ना कर सके। तो फरमाया इमाम ने यहां पर फरमाया अमातु मिनहा, इन्होंने मौत में से कत्ल कर दिया, अगर मैं कत्ल का लफ्ज इस्तेमाल कर लूं यहां पे, मौत में से कत्ल कर दिया जिस चीज के बारे में उन्हें डर था कि मौत हमारे अंदर से मार देगी। तो इन्होंने मौत की उस क्वालिटी को ही खत्म कर दिया, जिससे अब मौत तो क्या करती है, मौत आती है अपनी लालच के साथ, मौत आती है अपने खौफ के साथ। दो बुराइयां मौत की जिंदगी की, दुनिया की जिंदगी आती है अपनी लालच के साथ और दुनिया की जिंदगी आती है अपने खौफ के साथ। तो इन्होंने उस खौफ और लालच को अपने अंदर से मार दिया, ताकि दुनिया इनके अंदर से खुदा परस्ती को, आखरत की ख्वाहिश को कत्ल ना कर सके। दुनिया अंदर से क्या कत्ल करती है? दुनिया कत्ल करती है खुशु को, खुदा के साथ राब्ते को। और किस तरह कत्ल करती है? लालच और खौफ के जरिए। इन्होंने लालच और खौफ को ही कत्ल कर दिया, ताकि ये इनके अंदर से अल्लाह की ख्वाहिश को ना मार सके। उसके बाद फरमाया वथरकु मिन्हा मालिमु, इन्होंने पहले ही दुनिया से वो चीजें तैर कर दी जो दुनिया ने बाद में इनसे छीननी थी। दुनिया ने बाद में इनसे कुछ चीजें छीन लेनी थी ना, इन्होंने काम पहले ही छोड़ देते हैं, हमें क्या है इस मुसीबत। वरऊ इस्तिक्थार गैरहिम मिन्हा इस्तिक्लाला वदरकहुम, मैं यहां पे लहफौता, इन्होंने देखा इनकी बसीरत अफरोज नज़र ने तीसरी एक बात देखी, वजह कि दुनिया वाले जो दुनिया का ढेर लगा लगा के समझते हैं कसरत हुई, तो इनको ये पता चला कि नहीं, दुनिया की किल्लत दर हकीकत कसरत होती है। लोग दुनिया के ढेर को समझते हैं कसरत। तो मसलन अगर हमसे कोई पूछे भाई तुम्हें दुनिया ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, तो मैं कहूंगा ज्यादा कम नहीं, भर भर के चाहिए, बल्कि भर भर नहीं, सारी मुझे ही चाहिए, दूसरे को किसी को क्यों दूं। इन्होंने देखा कि दुनिया की कसरत दर हकीकत किल्लत है, और दुनिया की किल्लत दर हकीकत कसरत है। तो ये कम दुनिया पे खाने लग गए, इन्होंने दुनिया की कसरत के पीछे अपने दिमाग को जाया नहीं किया, इन्होंने कुछ ऐसा अपने आप को बनाया कि कम दुनिया पे खुश हो गए اور اس کم دنیا پہ خوش ہونے کی وجہ سے خدا ان سے خوش ہوا, اور خدا تو خوش ہوا تو کثرت کا ایک ڈھیر لگ گیا ان کے پاس. یہ لوگ اپنے دلوں میں غنی خدا کے غنی نمائندے بن گئے, یہ غنی خدا کے غنی نمائندے بن گئے, اور رزاق خدا کے رزاق نمائندے بن گئے. اب یہ دنیا اپنے لیے نہیں لیتے بلکہ دنیا دوسروں کو دے دیتے ہیں. ان کی قلت ان کی کثرت بن گئی. ابھی روایت آدھی بھی نہیں ہوئی ہے, تھوڑی میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ان شاء اللہ. اعزاز محترم, یہ سید الشہداء کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ ذکر کر پا رہے ہیں. دنیا کی گمراہی ہمیں نہیں چھوڑتی, دنیا کی نادانی غفلت اور دنیا کا اشتغال یہ ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑتا. یہ سید الشہداء کا صدقہ تھا جس نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا کہ ہم ان کے والد گرامی کے اقوال کو پڑھ سکیں, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربانیاں انہوں نے دیں تاکہ ہمیں زندہ کریں. اور اگر کوئی شخص واقعا چاہتا ہے سید الشہداء کی قربانیوں کے صدقے میں وہ کرے جو سید الشہداء کو پسند آئے, تو وہ یہ کام ہے, اس دین کو سیکھے جس کی خاطر قربانی دی. سید الشہداء اگر ہم ایک جملے میں کہیں تو سید الشہداء در حقیقت غدیر کے قربان ہیں. قربانی غدیر کی ہے, یہ غدیر تھا جس کی قربانی سید الشہداء نے دی. جس طرح غدیر کی پہلی قربانی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے دی, وہ غدیر کی پہلی قربان تھی, اور اس کے بعد سید الشہداء نے قربانی دی, اور ظاہر ہے کہ ان کی اولاد طاہرہ مسلسل قربانی دیتی رہی. اور ان قربانیوں میں ہر قربانی ایک نیا درس دے دیتی ہے, ایک نیا پہلو سکھا دیتی ہے. ابھی بات ہوئی مثلا دنیا کی مشکلیں, دنیا قتل کر دیتی ہے, دنیا انسان کے اندر لالچ اور خوف کے ذریعے سے اسے مار دیتی ہے. سید الشہداء کی قربانی نے ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کو شکست دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کیسے کھلتے ہیں. اور اگر ہماری بات یہاں تک آئی ہے تو پھر حضرت حر کا ذکر کرنا بہت اچھا رہے گا. کیسے کسی کو دنیا گھیر لیتی ہے اور بچنے کا چانس بہت کم رہ جاتا ہے, اور اچانک ایک نورانیت اس کو اس تمام گمراہی اور تاریکی سے نکال کر سید الشہداء کے کیمپ تک لے آتی ہے. اور وہ نورانیت کون سی ہے؟ وہ نورانیت ہے بی بی سیدہ کا احترام. نہیں معلوم حضرت حر کی زندگی میں کون کون سی نیکیاں رہی ہوں گی کہ جو اس عاشور کے دن حضرت حر کو سید الشہداء کے اتنا نزدیک لے کر آئیں. لیکن جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی, ہمیں شاید پتہ نہیں, میرے جیسے طالب علم کو نہیں پتہ, لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ مقام ہے جب سید الشہداء نے فرمایا سکلت کا اموک, تمہاری ماں تم پر روئے اور انہوں نے تمام تر غصے کو, تمام تر طاقت کے باوجود غصے کو کنٹرول کیا اور کہا کہ آپ کی والدہ کے لیے میں نہیں سوچ سکتا, دنیا میں اگر کوئی اور مجھ سے کہتا تو میں بھی اس کو یہی کہتا, لیکن جیسے ہی میں آپ کی والدہ کا سوچتا ہوں تو بجز احترام میں ان کو کسی اور نام سے یاد نہیں کر سکتا, لہذا میں نہیں سوچ سکتا کہ نعوذ باللہ تعالی وہ عظیم الشان ہستی کسی غم میں روئے, میں یہ نہیں سمجھ سکتا. اور یہی محبت کا جذبہ شاید عاشور کے دن ان کے کام آیا کہ جب بچوں کی العطش العطش کی آواز ان کے کان تک پہنچ رہی تھی اور سید الشہداء کے اصحاب کو اس مشکل میں دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کہ اور تم ذمہ دار ہو ان تمام مشکلات کے, تم نے راستہ روکا تھا. اور عجیب بات آپ کو یاد ہے یہ بھی تھی کہ سید الشہداء کے پاس پانی تو تھا لیکن وہ سارا پانی حر کے لشکر کو پلا دیا تھا, کیونکہ امام حسین نے وہ کیا جو ان کے اجداد نے کیا تھا اور ان ظالموں نے وہ کیا جو ان کے اجداد نے کیا تھا. سید الشہداء نے پانی پلایا تھا. ایزو حر کے معاملے میں ایک عجیب معاملہ موجود تھا. حضرت حر کے اس لشکر کے معاملے میں بیان کرتے ہیں, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں لشکر میں بہت پیچھے رہ گیا تھا اور میرے اندر طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی, और मैं अपने आप को घसीट रहा था तो मैंने दूर से देखा जैसे हमारे लश्कर को कोई पानी पिला रहा है। तो कहने लगा कि मेरे अंदर उम्मीद बंधी कि अगर मैं भी पहुंच जाऊं तो मरने से बच जाऊंगा, मुझे भी कोई पानी पिला देगा। लेकिन उठने की भी ताकत नहीं थी तो अपने आप को ज़मीन पर घसीट रहा था और देख रहा था कि बस अब मेरा मामला ख़त्म, अब नहीं पहुँच पाऊँगा। तो देखता है कि कोई कहीं बैठे हुए हैं, तो ये अपनी आंखों से बस उन्हीं की तरफ देखना शुरू कर देता है कि काश ये जो बैठे हैं अगर मुझे देख लें तो मेरी जान बच जाएगी। तो अचानक देखता है कि उन्होंने देख लिया है। और उसके बाद इमाम हुसैन ने किसी और को कुछ नहीं कहा, खुद मशकीजा लेकर इसे पानी पिलाने के लिए बढ़े। खुद मशकीजा उठाई, इस आदमी की तरफ आए जो निढाल था और नहीं उठ सकता था। सैयदुश्शोहदा करीब आए और देखा कि प्यास से इसकी हालत गैर है, इससे कहा कि मैं तुम्हें पानी पिलाने के लिए आया हूँ, तुम अपना चुल्लू बनाओ, मैं इसमें पानी डालूंगा, तुम पानी पी लेना। ये कहता है मैं इतना ज़ईफ़ था, मैं इतना नातवान था, मैं दोनों हथेलियों को पास लाता था, वो पानी डालते थे लेकिन मेरा हाथ हिल जाता था और पानी उसमें रुक नहीं पाता था। जब उन्होंने ये देखा तो फरमाया कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पानी पिलाए बगैर नहीं जाऊँगा, तुम सिर्फ अपना मुँह खोल दो, मैं उसमें पानी डालूँगा। ये कहता है मैंने मुंह खोला और उन्हें पानी डालना शुरू किया, मैंने तेज तेज पानी पिया, तो उन्होंने फरमाया तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हारी प्यास खत्म किए बगैर नहीं जाऊंगा। ऐसा आपने और मैंने ये सब जुमले सुन लिए ना, अब जरा सोचना कि कोई बच्ची पानी मांग रही है। या इलाही क्या हुआ, वो जो अपने दुश्मनों को पानी पिला रहा है उसके बच्चे पानी मांग रहे हैं। अब हुर परेशान हो या ना हो, हुर देख रहे हैं कि सैयदुश्शोहदा ने मेरे लश्कर को पानी पिलाया था, अब हमारी प्यास को बरतरफ किया था, अब सैयदुश्शोहदा के बच्चे प्यासे हो रहे हैं, अब सैयदुश्शोहदा की खिदमत में पहुंचे या ना पहुंचे। तो सैयदुश्शोहदा की खिदमत में पहुंचे। अरे तो बस एक आखिरी जुमला अर्ज करूंगा, हमें बस एक मशहूर रिवायत पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, बात कहते हैं मुस्तनद है, बात कहते हैं मुस्तनद नहीं है, बयान करते हैं कि हजरत हुर ने अपने बेटे को भेजा कि तुम जाके शहीद हो पहले। जब हजरत हुर के बेटे गए शहादत के लिए, हजरत हुर उठे कि अपने बेटे का लाशा लेकर आए, तो सैयदुश्शोहदा ने फरमाया हुर तुम बैठ जाओ, सब कुछ आसान है लेकिन जवान का लाशा लाना आसान नहीं है। मैं कहूंगा ये वाकया नहीं मालूम सही है या नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ये बात कि जवान का लाशा लाना मुश्किल है। अब ये कोई इमाम हुसैन के कल्बे मुकद्दस से पूछे कि जब अली अकबर का लाशा लाए तो वो कैसे लेकर आए थे। अल्लाह وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تمه حسين